ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 7 अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 26 मेरे पीछे दोहराइए। तस्मात् वैर अनुबंधेन निर्वरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जयात् कथचित् न इक्षते पृथक्। तस्मात् वैर अनुबंधेन निर्वरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जयात् कथञ्चित् न इक्षते पृथक्। तस्मात् वैर अनुबंधेन निर्वरेण भयेन वा स्नेहात् कामेन वा युञ्जयात् कथञ्चित् न इक्षते पृथक्। तस्मात् अतैव वैर अनुबंधेन निरंतर शत्रुता से निर्वरेण भक्ति से भयेन भय से वा अथवा स्नेहा स्नेह से कामेन विषय वासनाओं से वा अथवा युञ्जयात् केंद्रित करे कथंचित किसी न किसी तरह ना नहीं इक्षते देखता है पृथक अन्य कुछ। इसका अनुवाद पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की मेरे पीछे दोहराइए। अतएव यदि कोई बद्ध जीव किसी तरह शत्रुता या भक्ति भय स्नेह या विषय वासना द्वारा इनमें से सभी या किसी एक के द्वारा अपने मन को भगवान पर केंद्रित करता है तो परिणाम एक सा मिलता है, क्योंकि अपनी आनंदमय स्थिति के कारण भगवान कभी भी शत्रुता या मित्रता द्वारा प्रभावित नहीं होते। इसका तात्पर्य पढ़ता हूँ श्री प्रभुपाद द्वारा, बहुत छोटा तात्पर्य है, ध्यानपूर्वक सुनिए। इस श्लोक से किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि चूंकि कृष्ण पर अनुकूल प्रार्थनाओं या प्रतिकूल निंदा का कोई असर नहीं होता, इसीलिए परमेश्वर की निंदा ही की जाए या विधि विधान नहीं है। भक्ति योग का अर्थ है अनुकूल्यन कृष्णा अनुशीलनम। मनुष्य को चाहिए कि अत्यंत अनुकूल होकर कृष्ण की सेवा करे, यही असली आदेश है। यहाँ यह कहा गया है कि यद्यपि शत्रु कृष्ण के प्रतिकूल सोचता है किंतु भगवान ऐसी अभक्तिमयी सेवा से अप्रभावित रहते हैं। वे जिस तरह शिशुपाल को वर देते हैं उसी भाव से शत्रु भाव रखने वाले अन्य बद्ध जीवों को भी वर देते हैं, किंतु इसका अर्थ यह भी नहीं कि मनुष्य भगवान के प्रति शत्रु भाव रखे। यहाँ पर अनुकूल होकर भक्ति करने पर बल है, जानबूझकर भगवान की निंदा करने पर नहीं। कहा गया है, निंदाम भागवत शनवतम परतस्य जनस्य वा ततो नापैति सो अपि यातस्य सुकृताच्युत। यदि कोई भगवान या उसे भक्तों की निंदा सुने तो उसे चाहिए कि या तो तुरंत कार्यवाही करे या उस स्थान को छोड़ दे, अन्यथा उसे सतत नारकीय जीवन भोगना होगा। ऐसे अनेक आदेश हैं, अतः विधान के अनुसार मनुष्य को भगवान के प्रतिकूल नहीं होना चाहिए अपितु सदैव उनके अनुकूल रहना चाहिए। शिशुपाल द्वारा परमेश्वर में लीन होने की घटना भिन्न प्रकार की थी, क्योंकि अपने भौतिक जीवन के प्रारंभ से ही जय विजय को 3 जन्मों तक परमेश्वर को शत्रु की भांति मानने का श्राप मिला था। इसके बाद उन्हें भगवत धाम लौटना था। जय तथा विजय भीतर ही भीतर जानते थे कि कृष्ण भगवान है, लेकिन अपने उद्धार हेतु वे जानबूझकर उनके शत्रु बने रहे। वे अपने जीवन के प्रारंभ से ही भगवान कृष्ण को अपना शत्रु समझने लगे थे, लेकिन उनकी निंदा करते हुए भी शत्रुवत विचारों के साथ साथ उनका कीर्तन भी करते रहते थे। इस प्रकार वे कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करने के कारण शुद्ध हो गए। यह जान लेना चाहिए कि निंदक भी भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करने से अपने पापपूर्ण कृत्यों से मुक्त हो सकता है। अतः जो भक्त भगवान के अनुकूल रहकर सेवा करता है उसकी मुक्ति सुनिश्चित है। अगले श्लोक से यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण का ध्यान करने से मनुष्य शुद्ध हो जाता है और भौतिक जीवन से उसका उद्धार हो जाता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भयेन शब्द की बहुत ही सुंदर व्याख्या की है। भयेन का अर्थ है भय से। जब गोपियां सुनसान रात्रि में कृष्ण के पास गईं तो उन्हें अपने संबंधियों, अपने पतियों, भाइयों तथा पिताओं द्वारा दंडित होने का भय था, किंतु उन सब की परवाह न करती हुई वे कृष्ण के पास गईं। भय तो था, किंतु यह भय कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति को रोक नहीं पाया। मनुष्य को भूलकर भी ये नहीं सोचना चाहिए कि शिशुपाल की तरह शत्रु भाव से कृष्ण की पूजा की जानी चाहिए। आदेश ये है, आनुकूलस्य ग्रहणम प्रतिकूलस्य वर्जनम। मनुष्य को चाहिए कि प्रतिकूल कर्म का त्याग दे और भक्ति की अनुकूल स्थितियों को ही स्वीकार करे। सामान्यतः यदि कोई भगवान की निंदा करता है तो वह दंडित होता है, जैसे कि भगवत गीता के 16वें अध्याय के 19वें श्लोक में भगवान कहते हैं। ऐसे अनेक आदेश हैं, मनुष्य को चाहिए कि प्रतिकूल होकर कृष्ण को न पूजे, अन्यथा उसे कम से कम 1 जन्म में दंडित होना पड़ेगा जिससे वह शुद्ध हो सके। जिस प्रकार मनुष्य को चाहिए कि वे बाघ या सर्प जैसे शत्रु का आलिंगन करके मरने का प्रयास ना करे, उसी तरह उसे चाहिए कि भगवान की निंदा ना करे, नारकीय जीवन में जाने के लिए उनका शत्रु न बने। इस श्लोक का उद्देश्य ये बताना है कि भगवान के शत्रु का भी उद्धार हो सकता है, तो उनके मित्र के विषय में तो कहना ही क्या। श्रील माध्वाचार्य ने इस प्रकार से कहा है, मनुष्य को मनसा वाचा कर्मणा भगवान विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदक अपने पूर्वजों सहित नरक का भागी होता है। कर्मणा मनसा वाचा उद्विष्यात् विष्णु अभयम् मजन्ति पितरस्य तस्य नरके शाश्वती समा। भगवद गीता के अंदर 16वें अध्याय के 19 से 20वें श्लोक में भी भगवान कहते हैं, जो लोग ईर्ष्यालु तथा दुर्जन हैं, जो मनुष्यों में सबसे नीच हैं, वे मेरे द्वारा इस संसार में जीवन की विविध आश्रय योनियों में डाल दिए जाते हैं। ऐसे लोग आश्रय योनियों में बारंबार जन्म लेने के कारण कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच सकते। वे धीरे धीरे अत्यंत निकृष्ट जगत में धंस जाते हैं। जो भगवान की निंदा करता है वे असुरों के परिवार में डाल दिया जाता है, जिसमें भगवान की सेवा के विस्मरण होने की पूरी पूरी संभावना रहती है। भगवान कृष्ण भगवद गीता में 9वें अध्याय के 11वें और 12वें श्लोक में कहते हैं, अब जानन्ति मामूढ़ा मानुषिम तनिम आश्रितम परम भावम जानन्तो मम भूत महेश्वरम अर्थात जो मूढ़ अथवा धूर्त हैं वे परमेश्वर की निंदा करते हैं, क्योंकि वे मनुष्य की भांति प्रकट होते हैं, वे भगवान के अनंत ऐश्वर्य को भी नहीं जानते। मोघाशा मोह कर्मान मोह ज्ञाना विचित सा राक्षसीम आसुरीम जैव प्रकृति मोहिनीम चता। शत्रुभाव से जो भी किया जाता है वह विफल होता है। मोघाशा, यदि वे शत्रु मुक्त होना चाहते हैं या ब्रह्म में लीन होना चाहते हैं, यदि वे कर्मियों की भांति उच्च लोकों में पहुंचने के इच्छुक हैं, अथवा यदि वे भगवत धाम को वापस जाना चाहते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से निराश होना पड़ेगा। जहाँ तक हिरण्यकश्यपु की बात है, यद्यपि वह भगवान से अत्यधिक शत्रुता रखता था, किंतु वह अपने पुत्र के विषय में सदैव सोचा करता था, जो एक महान भक्त था। अतएव अपने पुत्र प्रहलाद महाराज की कृपा से हिरण्यकश्यपु का भगवान के द्वारा उद्धार हो गया। निष्कर्ष यह निकला कि मनुष्य को शुद्ध भक्ति नहीं छोड़नी चाहिए, यहाँ तक कि निजी लाभ के लिए भी हिरण्यकश्यपु शिशुपाल का अनुकरण नहीं करना चाहिए। सफलता प्राप्त करने का यह तरीका नहीं है। हरे कृष्ण। बहुत ही लंबा और सुंदर पर्पट है, इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि हमें भगवान के प्रति किस तरह का भाव रखना चाहिए। जब बहुत ही साधारण भाषा में बात करते हैं तो कहते हैं कि आपका किसी के प्रति तीन प्रकार का भाव हो सकता है, या प्रेम का, या वैर का, और या ना प्रेम का ना वैर का, न्यूट्रल। न्यूट्रल होना बड़ा ही कठिन कार्य है इस भौतिक संसार के अंदर। आप सोचें कि मैं किसी के प्रति किसी प्रकार का भाव नहीं रखूंगा, तो ऐसा होता नहीं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो परिलक्षित हो ही जाता है, या तो प्रेम दिखाई दे जाएगा या वैर दिखाई दे जाएगा, किसी ना किसी प्रकार से जो है आपका भाव प्रकट हो ही जाता है। तो अगर आपका किसी के प्रति प्रेम का भाव है या वैर का भाव है, तो भगवान के प्रति किस भाव से कितना फायदा होने वाला है आपको इस भौतिक संसार में या आध्यात्मिक संसार में, है ये आज का पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन है कि हम इसको किस प्रकार से समझें। भगवान की स्थिति क्या है, भगवान क्या कहते हैं? भगवान कहते हैं समो अहम सर्वभूतेषु नाम है द्विश्व अस्थि न प्रिय न भजंती तुम माँ भक्तया मई सतेषु चाप्या। मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, मैं सभी के लिए संभाव हूँ। किंतु जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थित रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, इसका मतलब है भगवान ने कहीं ना कहीं तो यहाँ बता दिया, हमारी निगाह से हम सोचते हैं इस प्रकार कि भगवान जो है वो पक्षपात कर रहे हैं, परंतु भगवान अगर पक्षपात करते तो प्राणियों के हृदय में जो विराजमान है उसमें भेदभाव हो जाता कि मैं इनके हृदय में विराजमान रहूंगा और इनके हृदय में नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा बैरी है। हम लोग भौतिक संसार में क्या करते हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा वैर का भाव हो जाता है उसको तो हम हरे कृष्णा भी नहीं करते, टाल देते हैं, नाखें फेर के निकल जाते हैं, दुख दूर से देखते हैं वो इधर से आ रहा है, हरे कृष्णा करनी पड़ेगी, मुस्कुराना पड़ेगा, तो दूसरी गली से निकल जाओ, इसके सामने मत पड़ो। अर्थात हम वैर के भाव को निभाते हैं। पर भगवान अगर वैर रखते हैं, भगवान का किसी से अगर वैर, भगवान नहीं वैर रखते, भगवान का किसी से अगर भगवान के प्रति को वैर रखता है तो भगवान उसके भी हृदय में विराजमान है, उसको छोड़ते नहीं, चाहे असुर है चाहे वो देवता है, कोई भी प्राणी है, भगवान सबके हृदय के अंदर समान रूप से विराजमान हैं। अब यहाँ पे जो है चर्चाएं आ रही हैं कुछ, जो 16वें अध्याय के श्लोक हैं, रूपा जी उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि आसुरी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, जिनका आसुरी स्वभाव है, या निम्न प्रकृति के लोग हैं, उनको भगवान जो हैं बार बार नरक में या इस तरह के स्थान पर भेजते हैं, तो इसका मतलब है क्या भगवान के उनके प्रति वैर भाव नहीं है? क्या भगवान उनसे वैर नहीं करते कि उनको इसी जगह पे भेजा जा रहा है? क्या हो रहा है? भगवान का जो बिहेवियर है वो किस प्रकार का है कि वो उनको जो है इस ऐसी स्थान पे भेज रहे हैं जिसको हम निकृष्ट मानते हैं? तो यहां भगवान बता रहे हैं कि भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से जो विमुख है, जो भगवान के प्रति जो है अपना जिम्मेदारी अपनी ड्यूटी नहीं समझते, वो इस भौतिक संसार में रहते हुए पर्पस ऑफ लाइफ मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है इसको नहीं मानते, इसको नहीं स्वीकार करते, इसको नहीं जानते, ऐसे लोग जो आसुरी संपदा वाले हैं, जिनका आसुरी व्यवहार है, उनके लिए फल बताया नरक की प्राप्ति कि मैं उनको नरकों में और निम्न योनियों में आसुरी योनियों में बार बार डालता रहता हूं। अब यहां बात कर रहे हैं कि व्यक्ति जो है अपने आप को दंभी मानता है, मैं पूजनीय हूं, मेरा मान करिएगा, मेरा आदर करिएगा, पर भगवान को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, अपने आप को भगवान मानना शुरू कर देता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भगवान क्या करते हैं? भगवान कहते हैं कि ऐसे व्यक्तियों को अल्टीमेटली तो नरक में ही जाना है, उसका और कोई उपाय नहीं है। इनको कहते हैं नराधमान। परंतु नरक की यातना का फायदा क्या है? क्यों डाला जाता है वहां पर? व्हाट इज द पर्पस? भगवान नरक में किसी व्यक्ति को क्यों डालते हैं? जो साधु से द्वेष करता है, जो निष्ठुर है, जो अशुभ स्वरूप है, उस व्यक्ति को बार बार आसुरी योनियों में गिराते हैं। हम जो भोग भोग रहे हैं वो अपने कर्मों के अनुसार भोग रहे हैं, परंतु जो व्यक्ति भगवान को, वेद को, शास्त्र को, भक्तों को नहीं मानता, उनका द्रोही है, तो उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा या नहीं भोगना पड़ेगा? जब उसको फल भोगना पड़ेगा तो ये संविधान, ये लॉ किसने बनाया? Who has made it? अल्टीमेटली लॉ मेकर कौन है? अल्टीमेट लॉ मेकर स्वयं भगवान है, उन्होंने लॉ बनाया है। तो यहां पर जो है भगवान कह रहे हैं कि लॉ मेरा है, संविधान मेरा है, फल मैं दे रहा हूं, परंतु इन व्यक्तियों के लाभ की बात कर रहा हूं मैं, इनका भी कहते हैं सुहृत सर्वभूतानाम, इनका भी मैं हितैषी हूं। हितैषी किस प्रकार से हूं कि नरक की यातना से जो पापी से भी पापी व्यक्ति है उनका पाप अपराध मिट जाता है। हमें सजा लगती है, हम समझते हैं कि हमको सजा मिल रही है, हमें उबलते हुए तेल में जलाया जाएगा, बहुत गरम गरम तवे पर बिठाया जाएगा, एक अलग से यातना शरीर मिलता है, बट बेसिकली उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? नरक में जाने का फायदा क्या है जीव के लिए? कि जब भी देखिए, अब डॉक्टर के पास जाते हैं, मैं बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, डॉक्टर ने कहा चीरा लगेगा, अरे बाबा बड़ी दर्द होगी, बड़ा कष्ट होगा। अब आजकल तो एनेस्थीजिया आ गए हैं तो कष्ट नहीं होता है, चलो थोड़ा लगा दिया तो सुन हो गया, उसके बाद काट दिया, बट अदरवाइज किसी बहुत बड़े फोड़े को काटना, जितना बड़ा फोड़ा होगा उतने ही ज़्यादा तकलीफ होगी, पर उस तकलीफ सहने के बाद का रिजल्ट क्या है? चैन आराम है कि तकलीफ है? कभी आप किसी डॉक्टर से पूछिएगा, पस से भरा हुआ फोड़ा होगा ना तो बड़ा दर्द कर रहा होगा, बड़ी भयंकर पेन होगी, जैसे ही आप हल्का सा चीरा देके पस को निकाल देंगे ना, एकदम उसके बाद शांति महसूस होगी, बिल्कुल दर्द खत्म हो जाएगा, विल बी रिलीव्ड, आपको लगेगा कि काम मैंने पहले क्यों नहीं करवाया, पहले मैं क्यों इतना डरता रहा चीरे से। तो भगवान कहते हैं कि जो हमें पाप का रोग लग गया है उसकी औषधि क्या है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है, उसका इलाज क्या है, उसकी दवाई क्या है? तो पाप के रोग की औषधि जो है नरक है। तो उस पाप रोग को मिटाने के लिए हमको नरक को वेलकम करना चाहिए कि उसको डिस्कार्ड करना चाहिए? तो पाप को मिटाने के लिए हमको जो है नरक का निमंत्रण स्वीकार कर लेना चाहिए। यस, मेरे पाप मिट जाएंगे, अब मेरा पापों से छुटकारा हो जाएगा। अब यहां एक समस्या आती है कि कुछ मनुष्यों को नरों में अधम कहा जाता है। वो नरों में अधम का मतलब क्या है? वो अधम क्यों है? नराधम क्यों है? पाप करते हैं इसलिए नराधम है, बिल्कुल ठीक है, पर उससे और ऊपर सोचिएगा, मनुष्यों में नीच है उसका कारण क्या है? कि जो नरक में गए वो तो पाप का फल भोगकर शुद्ध होकर अब ऊपर की योनियों में आएंगे, परंतु जो आसुरी मनुष्य हैं वो अनेक प्रकार के पाप करके पशु पक्षी से भी नीचे नरक योनि में जा रहे हैं। इसीलिए जो है उनका संग, उनका कांटेक्ट, उनके साथ रहना, नराधमों के साथ आपका कांटेक्ट होना, जिसे कहते हैं अभक्त संग त्याग, अभक्त का संग नहीं करना, क्योंकि वो जो है उससे आपको अल्टीमेटली नरक की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि आपकी चेतना जो है उससे अशुद्ध हो जाएगी। नरक का संग बेटर है कि दुष्ट का संग बेटर है? तो मुझे कह रहे हैं नरक का संग बेटर, उबाले जाओगे वहां जाके, पकौड़े की तरह तले जाओगे, पराठे की तरह सेके जाओगे, सोचिए, इज इट इजी? यस, क्योंकि नरक के वास से पाप नष्ट होके आप शुद्ध हो रहे हो, पर दुष्ट के संग से अशुद्ध होकर पाप बन रहे हैं, और पाप के ऐसे बीज बोए जाएंगे कि आगे आपको 84 लाख योनियां भोगने के बाद भी नष्ट नहीं होने वाले जब तक आप भक्ति नहीं करते। दुष्ट का संग करने के बाद आपको जो है अल्टीमेटली नरक या निम्न योनियां ही प्राप्त होने वाली हैं। 84 लाख योनियों के चक्र से कभी बाहर नहीं निकल सकते। अब यहां पे प्रश्न आता है एक कि भगवान कह रहे हैं कि जो मूढ़ हैं या धूर्त हैं वो परमेश्वर की निंदा करते हैं और वो मुझे नहीं जानते। यहां भगवान कह रहे हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूं तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। क्यों नहीं जानते? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? उसका कारण क्या है? तो कारण भगवान अगले ही श्लोक में बताते हैं, मोघाश मोघ कर्मानो मोघ ज्ञाना विचित्सा राक्षसी आसुरीम शय प्रकृति मोहिनी शिता। ये प्रभुपाद जी ने जो है आज के पर्पट के अंदर इस श्लोक को कोट किया है। तो जो 4-5 शब्द हैं इनका अर्थ समझने का प्रयास करें। मोघाशा, फर्स्ट वर्ड जो है इसका, उसके ट्रांसलेशन में प्रभुपाद जी लिखते हैं निष्फल आशा। मोघ कर्माना निष्फल सकाम कर्म, मोघ ज्ञाना विफल ज्ञान। तो मोघ का अर्थ होता है जो व्यर्थ है, जो यूजलेस है, बेकार है, निष्फल है, इसका कोई फल नहीं मिलने वाला। तो मोघ आशा का अर्थ है कि आप आशा करते हो, अर्थात डिजायर्स हैं, कामनाएं हैं, वो व्यर्थ हैं, बेकार हैं, यूजलेस हैं, इनकी कोई यूटिलिटी नहीं। कैसी कामनाएं? सांसारिक भोग की कामनाएं। अल्टीमेट पर्पस क्या है? व्हाट इज योर अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ? भौतिक संसार के बाहर जाना और आध्यात्मिक संसार में प्रवेश करना। पर अगर आप जो है इस भौतिक संसार में आशाओं को पाल लेते हो, कामनाएं करते जाते हो, कामनाएं को पूर्ण करते जाते हो, तो लोभ होता जाता है। कामनाएं नहीं होती पूरी तो क्रोध होता जाता है। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है? कि आप पुनः भवरूप में गिर जाते हो क्योंकि कामनाओं के जाल से आप बाहर नहीं निकल सकते। तो यहाँ कहते हैं कि जो भगवान के प्रभाव को नहीं जानते हैं ऐसे आसुरी मनुष्य, उनको आसुरी कहा गया, वे ऐसी निरर्थक मीनिंगलेस आशाएं करते हैं, ऐसी आशाएं जो कभी पूर्ण नहीं होती। अनलिमिटेड डिजायर्स, अनफुलफिल्ड डिजायर्स। क्या हम लोग जो है भौतिक संसार में जो आशाएं करते हैं सारी पूर्ण हो जाती हैं? सारी पूर्ण हो जाती हैं? मेरे को तो वही ऐसा है कि ट्रेवल करने के लिए हेलीकॉप्टर चाहिए, जब अंबानी के पास है तो मेरे पास क्यों नहीं हो सकता? आशा करके बैठ गए, क्या पूरी हो जाएगी? क्या डिजायर्स फुलफिल हो जाएंगे? इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसलिए जो है निरर्थक आशाएं जो हैं, ऐसी आशाएं कौन करता है? जिस व्यक्ति की आसुरी प्रवृत्ति है। मोघ कर्मान, जिनके कर्म भी व्यर्थ हैं, अर्थात या तो वो सकाम कर्म है या वो विकर्म, उन्होंने अपने कर्मों के द्वारा अपने आप को भगवान से नहीं जोड़ा, अर्थात निष्काम कर्म योग के प्लेटफॉर्म पे नहीं, अर्थात भक्ति योग में नहीं, अर्थात वो अकर्म नहीं करते हैं, वो ऐसे कर्म करते हैं जो आपको या तो पुण्य फल दिलवाते हैं या पाप फल दिलवाते हैं। और दोनों प्रकार का फल भोगने के लिए क्या चाहिए आपको? शरीर। शरीर से छुटकारा मिलेगा नहीं। तो ऐसे फल, ऐसे कर्म जो आपको शास्त्र के अनुसार फल देने वाले नहीं हैं, जो आप यज्ञ करते हो, तप करते हो अश्रद्धा पूर्वक, श्रद्धा नहीं है आप, आपने कर्म किया है परंतु आपको श्रद्धा नहीं है, तो उसका पूरा फल आपको नहीं प्राप्त होता, डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता। इसीलिए कहा गया है कि भगवान के प्रति सेवा जो है किस प्रकार की होनी चाहिए? डिवोशनल सर्विस विद लव, प्रेममयी सेवा चाहिए। इसके बाद आता है मोघ ज्ञाना, कि जिनका नॉलेज बेकार है, जिनका ज्ञान जो है वो व्यर्थ की बातों में समाया हुआ है, व्यर्थ की बातों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो तत्व से नहीं जानना चाहते, तात्विक ज्ञान नहीं है, शास्त्रोक्त ज्ञान नहीं है, युक्तिपूर्वक ज्ञान नहीं है कि मुझे भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त करना है, वो सांसारिक भोगों में लिप्त होने का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इंद्र तृप्ति कैसे करनी है इसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, इस भ्रम में रहते हैं। क्या भ्रम है? कि भोग में ही परम सुख है। देयर फीलिंग इज आसुरी। आसुरी क्या है? कि भोग में ही एंजॉयमेंट है। ये भक्ति, ये भौतिक प्राप्ति को छोड़ के आध्यात्मिक प्राप्ति की ओर जाना ये बेकार है। भोग ही सर्वोपरि चीज है। सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति ही मुझे करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को मोघ ज्ञाना कहा गया। अब यहां शब्द इस्तेमाल होता है विचेतसा, जिसकी चेतना दूषित हो चुकी है, जो विक्षिप्त है, जो पागलपन का व्यवहार करता है, जो संसार की वस्तुओं में आसक्त होने के कारण अस्थिर रहता है, इसकी बुद्धि जो है स्थिर नहीं। आपको सेंटर की तरफ आ रहे हैं, मंदिर की तरफ आ रहे हैं, रास्ते में आपको बहुत सुंदर एक भौतिक संसार से आकर्षित करने वाली वस्तु मिल गई, कोई इन्विटेशन मिल गया, ऑफर मिल गई, इसको छोड़ दिया, उसके पीछे चले गए। क्यों? कि अभी आपने दोनों में भेद नहीं समझा है, आपकी इंटेलिजेंस फिक्स नहीं हुई है, आप स्थित प्रज्ञ प्लेटफॉर्म पे नहीं आए, अभी आपका प्लेटफॉर्म जो है विचलित होने वाला है, तुरंत आप विचलित हो जाते हैं, जैसे ही भौतिक भोग से आकर्षण प्राप्त हुआ उसकी तरफ पलट के चले गए। तो जो आसुरी प्रकृति के मनुष्य हैं उनका मन प्रतिक्षण भांति भांति की कल्पनाएं करता रहता है और उसी प्रकार से उसको एंजॉय करने का प्रयास करता रहता है। अब यहां पे हमने चर्चा करी, दूसरी लाइन में कहते हैं राक्षसे मासुरीम छह प्रकृति मोहिनीम शता। तो शॉर्ट में कि जो आसुरी प्रकृति के लोग हैं, जो राक्षसी प्रकृति के लोग हैं, जो मोहिनीम लोग हैं, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है, एक एक लाइन में जानने का प्रयास करते हैं। व्हाट इज द क्वालिटी? राक्षस में और असुर में क्या भेद है? साधारण भाषा में हम दोनों को एक ही मान लेते हैं, राक्षस भी वही है और असुर भी वही है, कि असुर है राक्षस है एक ही बात है जी, एक ही जैसा है जी, ये तो क्या फर्क होना है। बट देर इज दिस डिफरेंस, लिटिल फर्क है दोनों के अंदर, कि राक्षसी प्रकृति क्या है और आसुरी प्रकृति क्या है, दोनों में भेद क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो शास्त्र के अनुसार जो है राक्षसी प्रकृति क्या कहते हैं, कि राक्षस जो है बिना कारण दूसरे से द्वेष करता, बिना कारण, और उस द्वेष के द्वारा उसका अनिष्ट करता, वो रीजन नहीं है, उसके पास अपना भी कोई कारण नहीं है। अगर आप जो है पढ़ेंगे रामायण पढ़ेंगे तो जो माल्यवान है, माली है, सुमाली है, इनको मनुष्यों को मार के खाने में, बस्ती उजाड़ने में मजा आता था, कारण कुछ नहीं था। एक शक्ति जो पिता के पास थी वो उन्होंने लिया, और लेने के बाद माता ने उनको दे दिया, और उन्होंने उसका जो है प्रयोग करना सीखा नहीं, तो एक गांव के पास गए और जाके शक्ति का प्रयोग कर दिया, सारा गांव स्वाहा हो गया, बड़ा मजा आया, विदाउट रीजन, कोई कारण नहीं है, बट दे एंजॉयड। अब उन्होंने उस शक्ति का ऐसे ही प्रयोग करना शुरू कर दिया, लोग मारते खा जाते, मारते खा जाते, मतलब उन्होंने जो है बिना किसी कारण के ही दूसरों से द्वेष कर रहे हैं, कोई रीजन नहीं है, मुझे तंग किया हो, मेरे को नुकसान किया हो, या मेरे को कोई लाभ प्राप्ति हो रही हो, मेरे को कोई फायदा हो रहा हो, तब तो मैं इनको मारूं, तब तो मैं कोई कार्य करूं, इनका अनिष्ट करूं, बिना कारण के ही द्वेष करके दूसरों का अनिष्ट करना और उनको कष्ट पहुंचाने का जो स्वभाव है उसे राक्षसी प्रवृत्ति कहा जाता है। अब आसुरी क्या है, असु शब्द होता है प्राण, जो अपने प्राणों के पोषण करने के लिए ललायित रहते हैं, अर्थात काम और क्रोध, कामनाएं और क्रोध के वश होकर अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए दूसरों को कष्ट देते हैं। यहां पर्पस आ गया, असु का मतलब है अपने प्राणों का पोषण करना, अपनी सेंस एंजॉयमेंट, कि इसको कष्ट देके मुझे बड़ा आराम मिलेगा। ऐसा है कि मेरे को तो फायदा हुआ नहीं, कोई बात नहीं, इनको भी नहीं हुआ, इसका मुझे बड़ा खुशी है, आई एम वेरी हैप्पी क्योंकि इनको भी नहीं हुआ, मतलब मेरे पास कामना है, जो भगवान कहते ध्यायतु विशाल पुंसा संग तेषु उपजायते, मतलब व्यक्ति जो है कामनाओं के जाल में उलझा हुआ है, ही वॉन्ट्स टू एंजॉय, और एंजॉय करने के बाद जब उसे एंजॉयमेंट के लिए राइट पर्पजफुल सर्कमस्टांसेस नहीं मिलते हैं, देन ही गेट्स एंगर, क्रोध आ जाता है। जब क्रोध आ जाता है तो उसके बाद मेरा स्वार्थ जो है सिद्ध नहीं हो रहा, इसलिए आपको हराने का, आपको क्लेश पहुंचाने का और आपका सब कुछ हरने का मेरा जो स्वभाव है उसको आसुरी प्रकृति कहते हैं। दुर्योधन में थी, राक्षसी नहीं था, वो आसुरी था, अपना एंजॉयमेंट चाहता था, अपने मजे चाहता था, सारा राज्य मुझे मिल जाए इसलिए छल से जीत लो, स्त्री मुझे मिल जाए द्रौपदी इसलिए इसको भी छल से जीत लो, मतलब उनका जो भाव था वो टोटल सेंस एंजॉयमेंट का और दूसरों का सब कुछ हारने का और अपना स्वार्थ सिद्ध करने का है, तो इसको आसुरी प्रकृति कहा जाता है। अब तीसरी बात आती है मोहिनी, तीन शब्द इस्तेमाल किए हैं इसके अंदर। मोहिनी का मतलब होता है कि या प्रमाद या मोह के कारण किसी भी प्राणी को दुख पहुंचाना, प्रमाद का मतलब होता है पागलपन, किसी भी प्राणी को कोई पर्पस नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, और आप जो है क्या है मोह में आ गए, चले जा रहे हैं, रास्ते में व्यक्ति मिला जाते जाते कोई छापड़ मार दिया, कोई कारण नहीं, प्राणी दिखाई दिया वो आपसे कुछ नहीं कह रहा है, डंडा मार दिया उसे, कह रहा है आपसे, वो आपको काट रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको सींग मार रहा है, आप पे भौंक रहा है, आपको कुछ कर रहा है क्या, कुछ नहीं कर रहा, मोह मींस इल्यूजन, पता नहीं मैं क्या कर रहा हूं क्या नहीं कर रहा, एब्सोल्युटली अननोइंगली आपको सही और गलत का ज्ञान नहीं है, प्रमाद का मतलब होता है पागलपन, तमोगुण में है, उनका कोई रीजन नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई पर्पस नहीं है, कोई मतलब नहीं है, बस टड़क कर दिया, दूसरे को कष्ट दे दिया। तो ऐसे दुष्ट स्वभाव को त्याग करने की चेष्टा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए। परंतु जो व्यक्ति ऐसे दुष्ट स्वभावों को त्यागने की चेष्टा नहीं करता और उसी को उत्तम मान लेता है, दिस इज द बेस्ट व्हाट आई एम डूइंग, चाहे वो राक्षसी प्रवृत्ति है, आसुरी प्रवृत्ति है, मोहिनी प्रवृत्ति है, मेरे को वो बेस्ट दिखाई देती है और बेस्ट मानते हुए उसको पकड़े रखता है, मुझे छोड़नी नहीं है, इसका मतलब है उसने इस प्रवृत्ति को धारण कर लिया। तो ऐसे लोग जो है भगवान के आश्रित ना होकर, उनके दैवी प्रकृति के आश्रित ना होकर आसुरी प्रकृति के आश्रित रहते हैं। तो अब यहाँ पे चर्चा आ रही है कि जो लोग भगवान को स्वीकार नहीं करते, भगवान तो उनके हृदय में भी विराजमान है, उनके प्रति भी भगवान का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं, हाँ भगवान तो मेरे दिल में है, मेरे दुश्मन थोड़ा है, पर उस सब के बावजूद हम देखते क्या है कि लोग भगवान की निंदा करने से बाज नहीं आते। मैंने मेहनत करी, मेहनत करने से देखो ये बिल्डिंग खड़ी कर दी, मैंने फार्म हाउस खरीद लिया, मर्सिडीज कार आ गई, अब किसी तरह से इनकम टैक्स का छापा पड़ गया, कार भी गई, बिल्डिंग भी गई, फार्म हाउस भी गया। भगवान बड़े निर्दयी हैं, मैं मंदिर जाता था हफ्ते में एक बार, मिठाई लेके जाता था, हाथ जोड़ता था, प्रणाम करता था, नमस्कार करता था, भोग भी लगाता था उनको, पर देखो मेरा सब कुछ छीन लिया। अच्छा किया तो मैंने, बुरा किया तो भगवान, ये निंदा नहीं है तो क्या है? तो यहाँ जो है प्रभुपाद जी लिखते हैं कि आपको भगवान की निंदा करने के बाद भी अगर अनुकूल फल मिलता है तो निंदा नहीं करनी चाहिए, दैट इज नॉट द प्रोसेस, वो तरीका नहीं है। अगर शिशुपाल है या रावण है या हिरण्यकश्यपु है तो ये किस प्रकार के लोग थे, ये किस प्रकार के लोग थे, यही क्वालिटी हम आज भी समझना चाहते हैं। कई लोग कहते हैं कि देखो बड़े बड़े वैष्णवाचार्य आए हैं, उन्होंने भी तो बहुत प्रचार किया, उन्होंने ये किया वो किया, वो भी तो हमारी तरह साधारण मनुष्य थे, वो भी तो कर्मों का फल भोग रहे थे, वो भी तो कर्मों का फल भोगने के लिए आए, वगैरह 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 ऐसी चर्चाएं करते हैं। पर व्हाट इज द आंसर टू दिस, इसका उत्तर क्या है? जय और विजय का आना और किसी जीव का आना, क्या दोनों एक समान है? जय या विजय ने क्या इच्छा करी थी कि हमको पृथ्वी पर जाना है? इच्छा करी थी क्या? पर जीव तो इच्छा करके आता है, जीव तो इच्छा करके कि मैं भगवान जैसे ऐश्वर्य का भोग करूं, तो उसको वहाँ ऐश्वर्य का भोग नहीं मिलता है, तो योग माया जो है भगवान की जो शक्ति है उसके लिए अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर देती है, यहाँ तो तू भगवान नहीं बन सकता है तो दूसरी जगह भेज देती हूँ, वहाँ तो भगवान बन के जो मर्जी कर, चॉइस तेरी है, फ्री विल है, तेरी मर्जी है, जैसा मर्जी भोग भोग, तू जैसा मर्जी कार्य कर, तू आई हैव गॉट नो ऑब्जेक्शंस। पर क्या जय विजय ने ऐसी इच्छा करी थी तो कैसे आए वो, क्यों मिला श्राप, क्यों गलत काम किया उन्होंने? व्हाई उन्होंने गलत, भाई भगवान के द्वार पर हैं, फिर गलत काम क्यों कर रहे हैं वो? जो भगवान के संग है, जो भगवान के द्वारपाल हैं, वो गलत काम क्यों कर रहे हैं? उन्होंने ऐसा गलत काम क्यों किया कि उनको श्राप मिला? श्राप तो अच्छे आदमी को तो मिलता नहीं ना, श्राप तो किसी बुरे व्यक्ति को ही मिलता है ना, इसका मतलब बुरे थे वो, अब बुरे थे तो भगवान के द्वारपाल क्यों थे? जो बुरा व्यक्ति है उसको भगवान ने कहा अच्छा अच्छा तू बहुत बुरा है ना, तू लड़ने में बहुत माहिर है, तो मेरा द्वारपाल बन जाए, ऐसा तो नहीं है ना, क्यों बनाया, क्यों ऐसा किया, व्हाई डिड दे डू, क्यों ऐसा हुआ। तो वैष्णव आचार्य जो है एक लेक्चर में बताते हैं, गौर गोविंद महाराज एक लेक्चर में बता रहे हैं कि भगवान का अपने बल के प्रदर्शन को आनंद लेने का मन हुआ है, मैं बहुत बलशाली हूं, मेरे से बलशाली कोई नहीं है, तो मैं उस बल का आनंद कैसे लूं, हाउ डू आई एंजॉय दैट, उस रस बल के रस का, बल के आनंद का मैं आनंद लेना चाहता हूं, मैं सबसे ज्यादा बलवान हूं तो मुझे लड़ने के लिए सामने पहलवान चाहिए, उसके बिना कैसे लड़ाई लड़े, शक्तिशाली व्यक्ति से ही मेरा युद्ध हो सकता है। तो योग माया जो भगवान के लिए सब अरेंजमेंट्स करती है, उसने कहा भाई भगवान की इच्छा है ये तो पूर्ण होनी चाहिए, अपूर्ण नहीं रह सकती, तो क्षण मात्र के अंदर ब्रह्मा जी के चारों कुमार जो आ रहे थे उनको रुकवा दिया गया द्वारपालों के द्वारा, और द्वारपालों को श्राप दिलवा दिया। ये प्लान है, ये अरेंज्ड है सारा, ये अरेंजमेंट किया हुआ है। अब जब उन्होंने जो है शापित होने के बाद रिक्वेस्ट किया है, तो उसको 3 जन्म के लिए जो है परमिशन मिला, उसके बाद बैक टू पेविलियन, जहां से गए थे वहीं आके द्वार पे खड़े हो जाओ, क्योंकि भगवान अपने बल का आनंद लेना चाहते हैं। तो 3 योनियों के अंदर उनको जो है भुगतना पड़ा, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, रावण और कुंभकर्ण, शिशुपाल और दंतवक्र। तो इन सब की मुक्ति हो रही है, दिखाया जा रहा है कि मेरे शत्रु हैं, पर एक्चुअल में शत्रु तो भगवान के द्वारपाल हैं, शत्रु हो कैसे सकते हैं, शत्रु की तो एक्टिंग करी जा रही है, रोल मिला है। जैसे डायरेक्टर कहता है कि इस नाटक में तुम्हें ये रोल करना है, अगले नाटक में पिता बनना है, तीसरे नाटक में पुत्र बनना है, अगले नाटक में भिखारी बनना है। एक आदमी जो है 3 नाटक में 3 जगह रोल कर रहा है, परंतु वो भिखारी तो नहीं है, वो किसी में पिता है किसी में पुत्र है, तो पिता भी नहीं है, पुत्र भी नहीं है, भिखारी भी नहीं है, बेसिकली तो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर जो इंडिविजुअली जय विजय इंडिविजुअल्स हैं, परंतु यहाँ पे एक्टिंग हो रही है, नाटक हो रहा है, दे आर इट्स ऑल प्लान फॉर द एंजॉयमेंट ऑफ द लॉर्ड, भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो उनको भेजा गया है, वो अपनी चॉइस से नहीं आए। इसी तरह हम जब आज के सिनेरियो में बात करते हैं, जब वैष्णव आचार्यों के बाद बात होती है, तो उनको भगवान यहाँ पे जनमानस का उद्धार करने के लिए भेजते हैं, वो अपनी चॉइस से नहीं आते, वो कर्मों के फल से प्रतिबाधित होकर कर्मों के फल से बंधन में नहीं आते, वो भगवान द्वारा भेजे गए हैं। किस लिए? कि आपको जाके जनमानस के अंदर भगवान के प्रति लोगों में अलख जगानी है, उनको प्रेम से देना है, प्रेम संदेश देना है, उनको भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त करने का रास्ता बताना है, जिससे कि मेरे पास लौट कर आ सकें, इसलिए भगवान उनको यहाँ पर भेजते हैं। तो यहाँ शिशुपाल के प्रति, हिरण्यकश्यप के प्रति अगर जो है उनका भगवान के प्रति निंदा का भाव था, तो भगवान कह रहे हैं कि हमको वो फॉलो नहीं करना है, बिकॉज दैट इज नॉट, वी आर नॉट एट जय विजय प्लेटफॉर्म। साधारण मनुष्य जो है जय विजय के प्लेटफॉर्म में जय विजय के बराबर है क्या? क्या हम लोग भगवान के द्वारपाल थे? क्या हम लोगों को वहां से यहां भेजा गया कि चारों कुमारों ने हमको शाप दिया कि हम यहां आ गए? या योग माया ने सारे अरेंजमेंट किए कि हमको यहां भेज दिया गया? तो ये जो लीला है, ये भगवान के द्वारा लीला हो रही है, एक सिस्टम बनाया जा रहा है हम लोगों को बहुत सारे संदेश देने के लिए, हम लोगों को समझाने के लिए। तो हमें जो है ये नहीं करना चाहिए कि शिशुपाल ने भगवान की निंदा करी तो मैं भी करूंगा, क्योंकि निंदा करने के बाद जो है भगवान आके उसका जब सर काट सकते हैं तो मेरा भी सर काटेंगे, मतलब सुदर्शन चक्र जो है मेरे पे भी चलेगा, और उसके बाद मैं भी भगवान में लीन हो जाऊंगा, उनमें प्रवेश कर जाऊंगा। ये भाव गलत है, दिस इज नॉट द वे। भगवान ने कहा है कि जो भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है मुझे प्रिय है, मैं उसको प्रिय हूँ, वो मुझे प्रिय है, वो मेरे में स्थित रहता है, मैं उसमें स्थित रहता हूँ, मैं किसी से पक्षपात नहीं करता, और मैं किसी से शत्रु का भाव है न मित्र का भाव है, पार्शियल नहीं। एक कॉमन एग्जांपल मैं देता हूँ, कई बार पारिवारिक संबंध के बारे में, एक व्यक्ति है मरने के करीब खड़ा है, 4 बेटे हैं, 4 बहुएं हैं, उससे पूछते हैं भैया क्या किया, सेठ जी ने कहा मैंने सबको बराबर बांट दिया, चार मकान थे एक एक दे दिया, चार दुकानें एक एक दे दी, चार फैक्ट्रियाँ एक एक दे दी, चार फार्म हाउस दे दिए सबको बराबर से, पैसा बराबर से, सोना बराबर से, मकान बिल्डिंगें बंगले सब बराबर से बांट दिए। मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, आई एम न्यूट्रल टू ऑल। पर फिर तुम प्यारा कौन है? बोले दो नंबर बेटा, बहू कौन सी प्यारी है? चार नंबर की बहू। क्यों भाई, बाकी क्यों नहीं? इसलिए कि दो नंबर का बेटा मेरे कहने पे चलता, मेरे आदेश का पालन करता, ही फॉलोज व्हाट आई से। चार नंबर की बहू मेरी प्रेम पूर्वक सेवा करती है, बाकी नहीं करती। तो पक्षपात तो नहीं है, डिवीजन बराबर है, हर एक के साथ बराबर का व्यवहार किया है, परंतु उसके बावजूद भी कोई उन सब में से प्रिय है। क्यों प्रिय है? भक्त क्यों प्रिय है? कि भगवान की प्रेममयी सेवा करता। तो भगवान जो है किसी से पक्षपात नहीं कर रहे, पक्षपात न करते हुए भी जो है वो किसी ना किसी रूप में किसी ना किसी के साथ जो है अटैच है। उनसे प्रिय है उनके प्रिय है, भक्त उनके प्रिय है, भगवान भक्त के प्रिय, भगवान को भक्त प्रिय है। ये सिचुएशन बहुत डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो है समझने वाला है कि हमें किसी भी रूप के अंदर अगर हम लें, भगवान का अनन्य स्मरण तो करना ही है, उसके बिना कोई चारा नहीं। बट प्रेफर्ड मोड क्या है, बेस्ट मोड क्या है, किस तरीके से भगवान का बेस्ट तरीके से स्मरण करना है, वैर के भाव से करना है या प्रेम के भाव से करना है, व्हाट इज द डिफरेंस, दोनों में भेद क्या है। शिशु बाल को किस प्रकार की मुक्ति मिली, पूतना को किस प्रकार की मुक्ति मिली, जितने राक्षसों का वध हुआ है उन्हें किस प्रकार की मुक्ति मिली। मुक्ति की पांच वैरायटी है ना, पांच तरीका है, सायुज्य है, सालोक्य है, सामीप्य है, सारूप्य है और साष्टी है। तो कुछ तो पांचों में भेद होना चाहिए ना, कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। रैंडम पिकअप है क्या, भगवान ने लॉटरी निकाली, टक इसको उठाया, इसको सायुज्य मुक्ति दे देता हूँ, दूसरी पर्ची उठाई इसको सारूप्य दे देता हूँ, तीसरी पर्ची उठाई इसे सालोक्य दे देता हूँ, फिर चौथी पर्ची उठाई इसे सामीप्य दे देता हूँ, फिर पांचवी पर्ची उठाई इसे साष्टी दे देता हूँ। पर्ची उठा के भगवान मुक्ति दे रहे हैं या आपकी भक्ति के अनुरूप आपको मुक्ति दे रहे हैं, किस प्रकार मुक्ति दे रहे हैं, कुछ तो फर्क पांचों में होना चाहिए ना, एक समान तो नहीं हो सकते, देयर हैज टू बी डिफरेंस। तो डिफरेंस क्या है, जो भगवान का लोक है इन सारे ब्रह्मांडों को मिला के देखा जाए तो उससे सारे ब्रह्मांड उसका चौथा हिस्सा है, उसके बाहर ब्रह्म ज्योति है। तो सायुज्य मुक्ति वाले तो ब्रह्म ज्योति में जा रहे हैं, तो आगे तो जा ही नहीं रहे, तो भगवान के लोक में तो जा ही नहीं रहे। अच्छा थोड़ी सी भक्ति और करी, चलो ऐसा है बॉर्डर पार करके लोक में प्रवेश कर गए। भगवान सर्वत्र हैं, सब जगह व्यापक, सब जगह उपस्थित हैं, पर फिर भी सामीप्य का एक अलग ही अंदाज है। तो थोड़ा और भक्ति करी है तो सामीप्य हो गए। अच्छा अच्छा तो मेरे समीप हो, चलो बंदर बन जाओ, खरगोश बन जाओ, बतख बन जाओ, मोर बन जाओ, ये बन जाओ, वो बन जाओ, वगैरह वगैरह है तो मेरे पास, एंड आई वॉन्ट टू एंजॉय विद यू। तुम ऐसा करो, तुमको मेरे जैसा रूप देता हूं, जैसा मेरा रूप है, मेरा जैसा रूप ले लो। तो आपके जैसा रूप लेना या बतख बनना, दोनों में फर्क तो है ना, क्या फर्क है? कहीं ना कहीं तो भक्ति के प्लेटफॉर्म पे भक्ति का कम ज्यादा होना होगा, रैंडम पिकअप है या थोड़ा भक्ति के प्लेटफॉर्म पे जब बढ़ेंगे आगे तब है। अच्छा मेरे जैसा रूप मिल गया है ना, कोई बात नहीं, अब तो मेरे जैसा ऐश्वर्य लो, रूप भी मेरे जैसा है, मेरे समीप भी हो, मेरे जैसा ऐश्वर्य भी है, मेरे लोक में हो, सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। इसका मतलब है जैसे जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते जाओगे उसी के अनुरूप आपको वैसे वैसे जो है भगवान के प्रति मुक्ति की प्राप्ति होती चली जाएगी। तो इन सबको जो है, जो निंदा करने वाले थे, हालांकि वो हमेशा भगवान का स्मरण करते रहते थे, उनके मन से कभी भगवान नहीं निकले, परंतु उनको स्थान तो कहाँ प्राप्त हुआ, ब्रह्म ज्योति में प्राप्त हुआ ना। भगवान के घर में भगवान जैसा रूप तो नहीं प्राप्त हुआ ना, तो भगवान जैसी साष्टी, भगवान जैसा ऐश्वर्य तो प्राप्त नहीं हुआ। तो यहाँ यही बात बताई जा रही है कि हमको बेसिकली एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमको भगवान के प्रति प्रेम का भाव रखना है, भगवान के प्रति वैर का भाव नहीं रखना है। अगर वैर का भाव रखेंगे तो रिक्वायर्ड इफेक्ट जो है वो नहीं आएगा। आगे जो है बता रहे हैं नारद मुनि ने आगे बताया, मनुष्य को भक्ति द्वारा भगवान के विचार में ऐसी गहन तल्लीनता प्राप्त नहीं हो सकती जितने कि उनके प्रति शत्रुता के माध्यम से, ऐसा मेरा विचार है। अब वो जो है ग्लोरीफाई कर रहे हैं शत्रुता करने को, पर जब पटपट पढ़ेंगे आगे बात समझेंगे तो और आनंद आएगा। हरे कृष्ण। श्री गोपाल की।